अमृत वाणी
सबको नमस्कार। जैसा मैंने देखा है कि जयपुर मथुरा टुंडला में हम लोग जाते हैं तो ऐसा ही होता है कि हृदय की तपन का बुझना, मन में शांति आना, बुद्धि शुद्ध व निर्मल होना, चित संसार की ओर से हटना, ये सब स्वतः ही हो जाते हैं। यही काम भंडारों में भी होता है। तो तीर्थ में पहुंचते ही मन से विषय वासना और चिंताएं दूर जाके खड़ी होती है। तीर्थ में पहुंचते ही मन से विषय वासना और चिंताएं दूर जाकर खड़ी होती हैं। वहां का वातावरण ऐसा शांत और लुभायमान होता है कि जिसमें बैठने उठने को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने को जी नहीं चाहता। मनुष्यों पर एक अलौकिक मस्ती सी छा जाती है। वह अपने को, सारे संसार को उस समय भूला हुआ सा देखता है। ऐसा क्यों होता है इसकी उसे खबर भी नहीं होती। कोई अज्ञात शक्ति गुप्त रूप से वहां प्रभावित हो रही है, जो अकारण ही सबको आकर्षित कर रही है, और जीव बिना प्रयास उसी के सहारे ऊपर को उठता जाता है। यह तीर्थ की परिभाषा है। तीर्थ का ही दूसरा नाम सत्संग है, जिसमें मंजन व अवगाहन से आत्मा अपने ऊपर के मल आवरणों को हटाकर शुद्ध व ज्योति रूप में प्रकाशित होती है। जिज्ञासु जिस निधि के लिए कठिन परिश्रम करके करोड़ों वर्ष तप कर जीवन बिताने के बाद भी जिस चीज को प्राप्त नहीं करता, वह वहां पहुंचते ही घड़ियों में प्राप्त कर लेता है। सत्संग रूपी गंगा में डुबो लेने से वह मोक्ष का भी अधिकारी बन जाता है। ऐसा स्थान जहां अमृत के सरोवर लहरा रहे हों, तपन बुझाने वाले और शीतलता प्रदान करने वाले जल प्रताप गिर रहे हों, वैतरणी नदी मूर्तिमान होकर पार करने के लिए हाथ फैला रही हो, उसे ही तीर्थ कहा जाता है। संतों की भाषा में इसी का नाम सत्संग है। पर ऐसे तीर्थ आज पृथ्वी पर देखने को भी नसीब नहीं है। यह आज के युग का प्रभाव है। पिछले युगों में तीर्थ का रूप ऐसा नहीं था जैसा आजकल है। बड़ी बड़ी नदियों के तट पर ऋषियों के अनेक आश्रम थे। बस्तियों में निवास करने वाले और घर की चार दीवारियों में बंद रहने वाले संसारी मनुष्य जब उन स्थानों में पहुंचते थे तो कुछ समय के लिए उनका जीवन दूसरी प्रकार का हो जाता था। खुली हुई हवा, वन, पर्वतों के दृश्य, जलाशयों की शोभा, पृथ्वी का शयन, कंदमूल फल का भोजन अंतर को परिवर्तित कर देता था। वह उल्लास में भर जाते थे, अपनी सारी व्यथा भूल जाते थे। यह उनको वहां जाने का फल मिलता था। साथ ही संत समागम भी प्राप्त होता था, जिसके प्रताप से आत्मा विभोर हो उठती थी और अपने निज धाम की ओर मुड़ जाती थी। इसका प्रमाण हमको महाभारत ग्रंथ से मिलता है, जिसकी रचना अब से 5000 पूर्व मानी जाती है। धर्मराज युधिष्ठर तीर्थाटन का इरादा करते हैं। भगवान कृष्ण ने महर्षि पुलत को पुरोहित बनाकर उनका साथ भेजा। पुलत जी जिन स्थानों पर उन्हें ले गए उसका सारा विवरण उस इतिहास में आया है। उसके पढ़ने पर ऐसा पता चलता है कि उन युगों में ऋषियों की तपोभूमि को ही तीर्थ माना जाता था। आजकल तीर्थ उनको बोला जाता है जहां मंदिरों की विशाल इमारतें जगमगा रही हैं, अच्छी अच्छी मूर्तियां झाड़ फानूस और चित्रों से खूब सजाया गया हो, अथवा गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि नदियों को भी तीर्थ बोला जाता है। ऐसा विश्वास लोगों में चला आता है कि इसमें स्नान करने और इसका जलपान करने से सारे पाप धुल जाएंगे और वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इन नदियों को इतना महत्व इसलिए प्राप्त हुई कि अधिकतर ऋषियों के आश्रम इन्हीं के किनारे पर थे। आजकल के लोग उस असली तत्व को भूल चुके हैं। उनकी दृष्टि केवल जल तक रह गई है। उनकी बुद्धि ने यह सब भुला दिया है कि मुक्ति सत्कर्मों और भगवान के भजन से मिलती है, केवल स्नान करने से नहीं। स्नान के साथ मनुष्य पिछले कर्मों के लिए पश्चाताप करे, आगे न करने के लिए धार में खड़े होकर प्रण करे, भगवान से क्षमादान की प्रार्थना करे, तो ऐसों को गंगा मैया सहायता पहुंचा सकती है और भगवान की प्यारी गोद में ले जा सकती है। पर स्नान करने वालों में यह भाव कहाँ होते हैं? उनको तो और खेलों की तरह तीर्थ स्नान एक मनोरंजन की वस्तु बन गया है। मूर्ति पूजा का जन्म बौद्धों के बाद होता है। बौद्धों ने 24 बौद्ध माने। गौतम बुद्ध उनके अंतिम बुद्ध हुए। उनकी मूर्तियां बनाकर उन्होंने विहारों में स्थापित कर, यह देख के जैन धर्म वालों ने भी अपने 24 तीर्थंकर के मंदिर बना डाले। श्री महावीर स्वामी उनके 24वें तीर्थंकर हुए। आगे यह सब तीर्थ कहे जाने लगे। हिंदुओं ने ही नहीं, मुसलमानों ने मजार की शक्ल में, रोमन कैथोलिक ईसाइयों ने, यहूदियों ने मूर्ति स्थापना कर अपने अपने तीर्थ बना लिए। यह पिछले और आज के तीर्थों में अंतर है। सत्संग कहीं नहीं है, केवल दर्शन और प्रसाद है। भोग लगाने वाले और पूजा करने वाले स्वयं ही इससे विमुख हैं, तो उनके अनुयायियों को क्यों बुरा कहा जाए? शूद्रों के लिए, मूर्खों के लिए लिंग पूजा का रिवाज त्रेता में आरंभ हुआ या केवल मन को एकाग्र करने के लिए था? लिंग चिन्ह को कहते हैं। यदि कोई गोल चिन्ह शिव का प्रतीक मानकर उस युग के लोग अपनी साधना करते थे, आगे बढ़ने पर उसे छोड़ देते थे, पर ऐसे स्थान पर भी तीर्थ नहीं माने जाते थे। तीर्थ वही है जहां संत समागम का कार्यक्रम होता है। पुराणों से, इतिहासों से कुछ हमको अब तक पता चला वह आपको लिख दिया है। आगे इसमें कौन ठीक है कौन गलत, इसका निर्णय निष्पक्ष विद्वान ही कर सकते हैं। हम यह दावा नहीं कर सकते कि जो हम बता रहे हैं वही सत्य है। आप खुद ही इसकी और तहकीकात कर लीजिए। तीर्थ यात्रा से लाभ। तीर्थ यात्रा अध्यात्म उन्नति के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए इसका हर मजहब में बड़ा ही महत्व माना है। प्रेमी उसी भाव को लिए तीर्थाटन करते हैं। हिंदुओं के जैसे तीर्थ हैं, वैसे ही बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई, यहूदियों सबके तीर्थ हैं। भक्त जन वहां जाते हैं। तीर्थाटन भी एक प्रकार का तप है जिससे अध्यात्म की ओर मनुष्य बढ़ता है। तप के भी दो भेद हैं, शारीरिक और मानसिक। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए परिश्रम करना, कष्ट उठाना शारीरिक तप है। इससे सहन शक्ति आती है और आगे चलकर ऐसा तप सुख दुख में समानता पैदा करता है। दुख के समय घबराने की आदत छुड़ाता है और सदा एक रस रहने की तरफ बढ़ाता है। मानसिक तप किसी एक ही इच्छा अथवा एक ही विचार पर मन को साधे रखना मानसिक तप कहलाता है। तीर्थ यात्रा को जाने वाले पथिक जिस समय अपने स्थान से चलकर अपने अभिष्ट तक पहुंचता है, तब तक एक ही ख्याल उसके दिमाग में गूंजता रहता है, मैं अमुक तीर्थ को जा रहा हूँ, वह दर्शन करूंगा, तीर्थ स्नान करूंगा। यही योग की धारणा का साधन है, यही मानसिक तप कहलाता है। पिछले युगों में रेल और मोटर वगैरह नहीं थी, तीर्थयात्री पैदल सफर करते थे। जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम इत्यादि को पैदल जाते थे। उसमें कितने ही दिन लगते थे, उतने ही दिन तक लगातार एक ख्याल को अपने मन में बांधे रखना कितना बड़ा साधन था। यही मानसिक तप है, यही योग साधना है। आगे एक और चीज जो तीर्थ यात्रा में आती है, निरअहंकारिता। ईश्वर और जीव के बीच में अहंकार का जो पर्दा है, जिसको प्राणी स्वयं ही चढ़ाता है, उसमें ही बंद के रह जाता है। जितना मनुष्य अपने अहंकार को झीना करता जाता है, उतना ही ईश्वर के समीप होता जाता है। मनुष्य जहां रहता है वहां उसके जानने वाले होते हैं। योग्यता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने देश में प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है, इससे उसका अहम मोटा हो जाता है। परदेश में कोई पूछने वाला नहीं होता, प्रतिष्ठा और इज्जत करने वाला नहीं होता। धक्के देने वाले और गालियां सुनाने वाले बीसियों मिल जाते हैं, उनको वह सुनता है, दिल को बुरा भी मालूम देता है, कभी कभी क्रोध भी आता है, पर परदेश में होने के कारण चुप रहना पड़ता है। इन व्यवहारों से उसे बड़ा लाभ पहुंचता है, उसका अहंकार टूटता है, सहन शक्ति आती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए यह दो चीजें बहुत जरूरी हैं। निरहंकारिता और सहनशीलता ही ऊंचा उठाती है और प्रभु के दर्शन कराती है। संसार में भी सहनशीलता से प्रतिष्ठा होती है, जिसमें यह गुण अधिक पाया जाता है उतना ही बड़ा महापुरुष गिना जाता है। यह सब तीर्थ यात्रा के लाभ है। प्रश्न शुरू करें।
फादर प्रणाम भैया जी।
नमस्कार,
मेरा नाम दिलीप सिंह राजपूत है, छत्तीसगढ़ कोसमंदा कवर्धा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जितना जितना मन सत्संग में लगता है, उससे कहीं ज्यादा कुसंग की ओर ही मन चला जाता है। परेशान हूँ मैं, कुसंग की मन को कैसे रोकें?
अब मन को जो आदतें पड़ जाती हैं, वो बड़ी मुश्किल से छूटती हैं, और उसी को छुड़ाने के लिए गुरु महाराज ने जो हमारे यहाँ एक तो गुरु से प्रेम और साप्ताहिक सत्संगों और भंडारों का जो सिलसिला शुरू किया, तो वो इसीलिए था कि क्योंकि हमारा मन जो है वो इस तरफ झुकना नहीं चाहता, तो उसको कहीं ना कहीं अटकाना है। तो जो गुरु महाराज ने साधना बतलाई वो भी इसीलिए है कि हम और चीजों को छोड़कर एक प्रकाश का ध्यान करें और इन सब चीजों को पीछे हटाएं। और फिर उसके अलावा भी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह गुरु महाराज के यहाँ लोग आते थे तो अपने आप जो वो सोच रहे होते थे जिन चीजों में फंसे हुए होते थे वो सब पीछे छूट जाती थी। आज भी यही होता है। दादा गुरु महाराज ने ये हम लोगों को सबको बतलाया कि सत्संग साधु संग कुसंग इनमें फर्क है। अगर जिस चीज के हम साथ रहेंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो कुसंग का तो हम असर जो है हमारे जीवन पे आएगा ही आएगा। उससे अगर हमें बचना है तो वो निवृत्ति में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निवृत्ति का मार्ग उन्होंने बतलाया है कि रहो सबके संग लेकिन अपनी सुरती की धार कहीं और लगाए। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम स्थूल में अगर कहीं संसार में तो ऐसी चीजें आती ही रहती हैं हमेशा कि किसी के साथ जाना है कुछ काम करना है तो तरह तरह के लोगों के साथ होता है तो लेकिन उस संघ का जो छींटा है वो अपने पे कैसे हम आने से रोकें ये हमें सीखना है। और उसका एक ही तरीका है कि अपना अंतर जो है वो कहीं और जुड़ा रहे फिर हम जहां भी रहें उसका असर हो सकता था वो या तो कम हो जाएगा या नहीं। मैंने ये चीज तो अपने यहाँ के संतों में सभी में देखी कि असली चीज ये है कि हम किसी संघ के छींटे पे पड़े उससे अच्छा ये हो कि हम अपने आप को इतना मजबूत और ताकतवर बना लें कि उन पर हमारा छींटा पड़े ना कि उनका छींटा हम पे पड़े। तो सत्संग में आते रहने से अगर हम अंतर में उस चीज को उस शक्ति को सोख लें तो ये हो सकता है।
मैं सीताराम साहू कुसमंदा छत्तीसगढ़ साहब प्रणाम साहब।
सीताराम जी जी
मेरा प्रश्न है साहब सत्संग में बैठता हूँ साहब लेकिन परंतु ये जो है काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब पीछा क्यों नहीं छोड़ता साहब।
हाँ तो सत्संग में तो हम बैठते इसीलिए हैं कि किसी तरीके से इन वो बोला है कि डाकू हैं सब जो हमारे पास है वो लेके ये लोग भाग जाते हैं तो इन चीजों से बचने के लिए कोई ना कोई शक्ति हमें अपने साथ लेनी होगी क्योंकि हम अगर इनसे जब भी कोशिश करते हैं जीतने की तो हार ही मिलती है। तो अब जब तक हम अपने आप को हमारे अंतर को बलवान नहीं बनाएंगे और अपने गुरु से ईश्वर से वो शक्ति नहीं लेंगे तो एक तो ये है कि हम ये सोचें कि इन पर विजय प्राप्त हो जाए। दूसरा ये है कि जो अभी बात हो रही थी कि प्रवृत्ति में निवृत्ति निवृत्ति में प्रवृत्ति यानी एक बैलेंस बनाया जाए क्योंकि जो चीज हमको ईश्वर ने दी है वो खराब नहीं है उसका हम खराब यूज करते हैं। गुस्सा जैसे अगर हम क्रोध की बात करें तो क्रोध हमें कई बार बच्चों को समझाने में या कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको सही रास्ते पर लगाने में काम आ सकता है। अब माँ बाप बच्चों से कभी क्रोध दिखाते हैं लेकिन प्रेम उतना ही रहता है लेकिन उसका उपयोग करते हैं जिससे कि कुछ चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएं। तो अगर हम इन चीजों का बैलेंस के साथ जिस चीज के लिए वो हमें दी गई हैं उस तरीके से अगर उपयोग करें तो ये हमारे उपयोग की चीजें हो गई हमारे लिए अच्छी चीजें हो जाएंगी। लेकिन होता ये है कि हम इन चीजों में बहे चले जाते हैं। क्रोध आया तो ऐसा कि बाकी सब चीजें भूल गए ये भी भूल गए कि हम कहाँ हैं किससे बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं। तो वो चीज जो है वो हमको उससे बचना है। काम का वेग आया तो एकदम सब चीज भूल गए लोभ में कितनों की लुटिया डूब गई। तो उस चीज का उपयोग की बजाय सदुपयोग की बजाय उसका दुरुपयोग की तरह से हुआ। तो हमें ये चीजें दी गई इसलिए कि हम अपने जीवन को सुधारें दूसरों के जीवन को सुधारें लेकिन हम उनके प्रभाव में आके कहीं और ही बहे चले जाते हैं। तो इसलिए हमें विवेक की जरूरत है जो कहा गया कि बिन सत्संग विवेक न हो। तो वो विवेक कहाँ से आए वो शक्ति कहाँ से आए उस सब के लिए गुरु महाराज ने हमको एक तरीका बतलाया कि हमसे जुड़े रहो, हमारी शक्ति लेते रहो और किस तरीके से इन चीजों का उपयोग करना है वो हमारे जीवन।
प्रणाम साहब, मेरा नाम ढुल्लू राम साहू, कवर्धा से बोल।
जी नमस्कार।
हाँ, मेरा मन सत्संग में लगने के बाद फिर टूट जाता है।
सत्संग में मन नहीं लगता है?
लगने के बाद फिर टूट जाता है मन, इधर उधर।
मन ऐसा ही है कि वो अपने आप को किसी एक चीज पे ठहरना नहीं चाहता, इधर से बिल्कुल कहीं कहीं तो इसको एक बेलगाम घोड़े की तरह से कहा गया है, इसको और भी उपमाएं दी गई हैं। तो इसको किस तरीके से इस घोड़े पे अगर हमको बैठना है तो उसको लगाम लगानी होगी, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना होगा, तो वो कैसे किया जाए? तो गुरु महाराज ने जो साधना हमको बतलाई है उसमें अपने मन को एक विचार पे लेके आने की बात है, बहुत सारे विचारों से एक विचार पे। तो अब वो मन नहीं चाहता, तो उसके लिए परम पूज्य छोटे भैया कहा करते थे कि कुश्ती मत लड़ो, जितना बहुत जोर से प्रयास करोगे तो उतना ही ये इधर उधर जाएगा। तो हमें करना ये चाहिए कि हम एक तो कर्तव्य बुद्धि से, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, अपने जो समय हमने इसके लिए देना है उसमें बैठें, और मन से कुश्ती लड़ने के बजाय मन को ऑब्जर्व करें, उसको देखते रहें कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो धीरे धीरे क्या है कि इधर उधर जाके फिर अपनी जो प्रत्याहार जो गुरु महाराज ने बताया कि अपने अंतर्मुखी होके आंख बंद करके अंतर में हमें देखना है और उस प्रकाश पे अपना फोकस करना है, तो एकाग्र करना है। अगर वो मन इधर उधर जाए तो उसको वापस इसी विचार पे लाना है, लेकिन अगर बहुत इधर उधर जा रहा है तो उसको उससे कुश्ती लड़ने की बजाय ये देखते रहें कि वो क्या कर रहा है, किधर की बातें आ रही हैं। तो ये अगर हम करेंगे तो थोड़े दिनों बाद इस क्रिया को करने से ही मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। तो शुरू में दिक्कतें आती हैं तो वो कोई उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बीच एक और चीज हमारे संतों ने हमें बतलाई कि हमारे जो संस्कार हैं, प्रारब्ध हैं, वो सब आके ये जैसे सफाई का काम शुरू होता है, तो अगर कोई कमरा है साफ लग रहा है मगर उसको अगर साफ करना, उसमें झाड़ू लगाना शुरू करो तो धूल मिट्टी थोड़ी और दिखने लगती है। तो ऐसे ही जब हम ध्यान करने लगते हैं तो कभी कभी विचारों का एक तांता सा लग जाता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ देखते रहें और कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और भी मन की स्थितियां आती हैं, कभी बहुत आनंद आता है, कभी बिल्कुल निष्क्रिय सा आलस्य होता है कि बैठने का मन भी नहीं करता। तो उसमें यही कहा कि इन सब स्थितियों में हम अगर अपने मन को देखते रहें और कर्तव्य बुद्धि से पूजा में बैठते रहें। बाकी गुरु महाराज से ही प्रार्थना है कि अपनी शक्ति से इस मन को साधने में सहायता दें।
प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम बलवीर सिंह राजपूत, कवर्धा कोषमंडल।
हाँ नमस्कार बलवीर सिंह।
इसमें मेरा मन तो भटक गया है सर, सर मन बहुत भटका हुआ है, ये अपराधी जैसा लगता है मुझे।
तो अपराधी जैसा लगता है, तो ये जो पिछला सवाल था उसका जवाब और इसका जवाब एक सा ही है। मन हमको अगर अपराध बोध करा रहा है या ऐसा लग रहा है कि हम बहुत भटक रहे हैं, इन सब चीजों से गुरु महाराज ने हमको ऊपर उठने के लिए कहा है। उस मन की तरफ ना देखें, गुरु, गुरु के प्रकाश स्वरूप, और वो चीज जो हम इन सब चीजों से हमको ऊपर उठाएगी, हमको शक्ति देगी, शांति देगी, प्रकाश देगी, उससे अपना संबंध जोड़ना है। अपने मन से जो हम विचार ला रहे हैं जो उतने ऊंचे नहीं है, जो उतने अच्छे नहीं हैं, उनसे अपने को थोड़ा अलग करके गुरु के विचारों से अपने को जोड़ना है, गुरु से अपना संबंध स्थापित करना है, और फिर एक विचार रहित अवस्था तक हमें पहुंचना है जिसमें शांति है। तो मन के जो खेल हैं, इसमें आनंद नहीं आ रहा है या इस अपराध बोध से हम अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना है। उसके लिए हमें उनकी ओर देखना होगा, उनसे अपने आप को जोड़ना होगा और उनकी शक्ति को, उनके प्रकाश को अपने में लेना होगा। और उसके लिए वही क्रिया है जो गुरु महाराज ने बतलाई है, अपने आप को उनसे जोड़े रखें और अपने मन की बातों में नहीं आए कि ये यूं कह रहा है कि हम ऐसे हैं या वैसे हैं। जैसे भी हैं, उनके पुत्र हैं, उनके परिवार में हैं, तो जैसा रखेंगे वैसा खुश रहें।
प्रणाम सर जी।
नमस्कार।
मेरा नाम जय चंद्र जी सर जी। ध्यान में बैठा हूँ परंतु मन रहते ही।
आज तो लगता है सबका प्रश्न यही है, आप कब से सत्संग में
हैं? इतने साल से कर रहा हूँ, मतलब सत्संग
मैं देखता हूँ कई बहुत बहुत सालों से हैं। प्रश्न उनका यही रहता है कि मन एकाग्र नहीं होता है सत्संग में बैठने के बाद भी, ऐसा नहीं लगता कि हमारा ध्यान लग रहा है, जो विचार पहले आते थे वैसे ही विचार आ रहे हैं। तो दो तीन चीजें हैं कि जैसे हम अगर ये कहते रहें कि हमें नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद के बारे में सोचते रहें, तो वो नींद नहीं आएगी, तो वो उससे हमको अलग हटना होगा इस विचार से कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, तब नींद आएगी। तो ऐसे ही हमारा ध्यान कब लगा और कब नहीं लगा, ये भी अक्सर हमें पता नहीं लगता कि कब कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ध्यान में हम चले गए, अब फिर एक अचानक कोई और विचार आ गया तो उसमें से हट गए। अब हमें ये पता नहीं कि हमारा ध्यान असल में लगा है या नहीं लगा, तो हमें हमेशा ये लगता है कि हमारा तो ध्यान लगा ही, तो ये अक्सर सुनने को मिलता है। तो इसमें दो चीजें हैं कि एक तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि कुंडलिनी का उत्थान दिखाई दे रहा हो, कि कोई शब्द सुनाई दे रहे हो या कोई प्रकाश दिख रहे हो, हमको ये पता लगता रहे कि भाई हमारी प्रगति हो रही है। तो यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, गुरु महाराज ने इन सब चीजों से हमें अलग रखा क्योंकि उससे अहंकार आता है। तो अगर हम यही सोचते रहे कि हम तो ध्यान में बैठने के काबिल भी नहीं है, तो एक निरहंकारिता की एक स्थिति भी आती है। अब वो लग रहा है कि नहीं, वो उनके ऊपर छोड़ के हम अपना सत्संग में, पूजा में, ध्यान में बैठें, और जैसा पहले कहा जा चुका है कि हम ये नहीं देखें कि मन के विचारों से हमें ऊपर उठना है, तो उनकी तरफ देखें, अपने विचारों की तरफ कम ध्यान दें। और लेकिन अगर मन परेशान कर ही रहा है तो उससे कुश्ती लड़ने की बजाय अगर हम सिर्फ उसको दृष्टा भाव से देखते रहे, तो वो थोड़े दिन में कुछ टाइम के बाद थक कर जैसे बेलगाम घोड़ा काफी भागने के बाद इस लायक हो जाता है कि हम उस पर लगाम लगा सकें, तो वही बात है। तो अपने साधन को न छोड़ें और जो क्रिया गुरु महाराज ने बतलाई है उसमें कर्तव्य बुद्धि से लगे रहें, अवश्य इसका लाभ होगा। अक्सर हमें खुद पता नहीं लगता अगर हमारा व्यवहार सुधर रहा है। परम पूज्य बड़े भैया कहा करते थे कि यहाँ पे और कोई तरीका तो है नहीं जानने का, अगर हमारा व्यवहार सुधर रहा है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, अगर व्यवहार सुधार नहीं हो रहा है तो जरूर किसी से बात करके कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम ठीक नहीं करें।
प्रणाम सर जी। मेरा नाम श्रवण गोस्वामी सर, कवर्धा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है सर, सत्संग को ध्यान पूजा सब ठीक चल रहा है, लेकिन समाज में बैठने के बाद जो जैसा कहता है वैसा टाइप का मन हो जाता है।
नमस्कार श्रवण कुमार जी। ये भी आज प्रश्न पहले आ चुका है, जो कुसंग की बात थी कि अपने को संग के छींटे से कैसे बचाया जाए और दूसरे का असर हम पे कम हो बल्कि हमारा असर दूसरों पे हो। और तो उसके लिए हमें थोड़ा अपने अंतर में शक्ति का प्रादुर्भाव करना होगा और वो गुरु महाराज की क्रिया से होता है। गुरु महाराज ने जो तरीके बतलाए हैं कि अपनी सुरती की धार हमेशा उनसे अगर हमारी जुड़ी रहे तो इन चीजों से हम बच सकते हैं, लेकिन शुरू में ये करना मुश्किल होता है। तो दादा गुरु महाराज उन्होंने कहा कि नए साधकों के लिए और हम सब के लिए वैसे तो ये कुसंग जो है वो बड़ा हानिकारक होता है, लेकिन अब आज के समाज में आज उससे बचना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर हम अपने आसपास जैसे एक कवच होता है ये मान लें कि हमारा गुरु जो है वो हमेशा हमको घेरे हुए है और कोई चीज जो है वो पहले उनको उनके थ्रू ही आएगी, सीधी हमारे पे नहीं आ सकेगी। तो कोई भी उल्टा सीधा विचार हो तो वो दूसरे का गुरु महाराज उसको लें और हम तक ना पहुंचे, तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हमेशा उनको अपने अंतर में रखें, अपनी सुरती की धार उनसे जोड़े रखें, तो भी इससे बच सकते। लेकिन ये सवाल बड़ा अच्छा है, दोनों ही सवाल बड़े अच्छे हैं कि अपने मन को एकाग्र कैसे किया जाए और दूसरों के विचारों से प्रभावित होने से कैसे बचा जाए। और ये हम सभी के लिए लागू होता है और सत्संग में जो आने का मुख्य कारण है वो यही है कि अगर हम में इतनी शक्ति होती कि हम ये दोनों काम खुद ही कर सकते होते तो उसकी जरूरत नहीं थी किसी और के सहायता की, लेकिन हमें सहायता की जरूरत है तो इस दरबार में उस सहायता जैसे वो कृपा बरसती है। तो ये शक्ति, ये हम सब में उनकी शक्ति प्रभावित होने लगती है और ऐसा देखा गया है, मैंने खुद देखा है कि कैसे कैसे हमारे संत जो हैं अपने जीवन को सुधारते चलते हैं। और एक बात और मेरे जहन में आ रही थी कि प्रश्न जो ये पूछा गया था कि काम क्रोध लोभ मद इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये भी हमारे मन को प्रभावित करते हैं। तो बाकी सब चीज़ें जो बताई गई वो तो हैं ही, एक और चीज़ जो है वो एक तरह से और भी सरल है, एक तरह से और मुश्किल भी है, सेवा। तो अगर हम गुरु की, गुरु के मिशन की, गुरु के परिवार की जब सेवा करते हैं और उसको निष्कामता के साथ करें, तो कई बार मैंने देखा है अपनी आंखों से कि जब हम भंडारों में भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं या और कोई व्यवस्था में लगे हुए हैं तो और कोई विचार तो हम बहुत लोगों के साथ हैं, मगर उस समय कोई और विचार जो है वो हमारे जहन में आ ही नहीं रहा। जैसे वो तीर्थ की बात अभी से शुरुआत की थी आप, तो ऐसी जगह पे जाके अगर सेवा की जाए जहाँ हमारे विचार जो हैं अपने आप सोते ही कहीं और चले जाएं और हमारा सिर्फ एक सेवा का विचार रह जाए, तो ये मैंने अक्सर देखा है, भंडारों पे भी देखा है और भी सत्संगी भाई जो हैं जब सेवा में लगते हैं तो अपनी दुख दर्द काम क्रोध मद सब पीछे रह जाते हैं। तो वो भी एक तरीका है, बहुत सुंदर तरीका है, इसमें अपना भी भला और दूसरों का भी भला।
भैया जी अभी मेरे साथ वो एक रघुनाथ जी और जुड़े हुए ना, उनके से ज्यादा आती है कि वो अभी कुछ काम वगैरह नहीं करते हैं, कुछ कहीं भी जॉब नहीं करते हैं। उनके ये चक्कर पड़ता है कि जैसे वो गुरु महाराज का जो ध्यान वगैरह तो दोनों टाइम करते हैं, पर कहीं जॉब इसलिए नहीं करते कि वहां जाते तो ये देखते हैं कि वो सब सांसारिक आदमी है और उनकी सेवा करनी पड़ती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है।
तो बात ये है कि गुरु महाराज ने कहा कि हमें वैराग्य जिस तरीके से पुराने जमाने में होता था कि हम अपने घर बार को छोड़ के अपना जो गृहस्थ धर्म है और जो जो काम हमें दिए गए हैं, कर्तव्य हमें दिए गए हैं, उन सब को छोड़ के अगर हम सिर्फ साधन और अपना अध्यात्म प्रगति को ही हम एक अगर ध्येय माने तो वो गृहस्थ धर्म में निभाते हुए भी और अपने सारे जो हमें ड्यूटीज दी गई हैं उनको करते हुए भी हम कर सकते हैं। ये सारा गुरु महाराज ने जो सारा अपना साहित्य है उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है वो इस चीज को समझाने में लगाया कि उनके प्रवचनों में उनके साहित्य में बार बार ये बात आई है कि ये सोचना कि हमें संसार के जैसे अभी बात हुई कि भाई हम संसारी लोगों में जाके रहेंगे तो उनका संग का छीटा पड़ेगा या हमारी उनकी वजह से हमारे जो साधना है उसमें फर्क पड़ेगा या उनकी सेवा करना ठीक नहीं है। तो बात तो यह है कि अगर हम आध्यात्मिक स्थिति हमारी अच्छी है तो पहली चीज तो ये कि उस संग का छीटा हम पे पड़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि तब हमें समझ में आना चाहिए कि आम आदमी को जिसको इसकी जरूरत है उससे तो हमें मिलना चाहिए, जो हमने पाया है वो उससे शेयर करना चाहिए, तो उससे अलग रहने की तो बात होनी नहीं चाहिए। बात तो ये होनी चाहिए कि हम एक उदाहरण पेश करें, लोगों से मिलें और उनको गुरु महाराज की शक्ति से अवगत कराएं, उस शक्ति को या जो भी कुछ हमें मिला है वो उनसे शेयर करें और उनका भी जो जिन चीजों से उन्हें परेशानियां हो रही हैं उससे हटा के इस तरफ हम उनको लगाएं। तो संसार से भागने की तो बात गुरु महाराज ने बिल्कुल कही नहीं, बात ये कही कि प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति, यानी संसार में रहते हुए भी कमल की तरह रहा जाए। तो देखना यही है कि हम गुरु महाराज की बताई हुई कुछ बातों को तो अमल कर लें जो हमें ठीक लग रही हैं और बाकी जो चीजें हैं वो अपने मन से करते रहें तो हम फिर मनमुखी ही रहे, गुरुमुखी नहीं। जो चीज उन्होंने बतलाई है कि संसार से अटैचमेंट कम करना है, उससे जो हमारा लगाव है राग है वो कम करना है, वैराग को उन्होंने सिर्फ ये बतलाया कि अपने मन को उस से हटा के किसी और चीज में यानी गुरु में लगा देना। तो वो जो कमल की तरह से रहने की जो बात है कि रहे तो तालाब में ही गंदे पानी में ही, लेकिन उसका उससे ऊपर और उसका कोई असर नहीं हो, ऐसी स्थिति अपनी पैदा करनी है अपने अंतर में। क्योंकि ये चीज तो गुरु महाराज ने कहीं नहीं कही कि, बल्कि परम पूज्य बड़े भैया परम पूज्य छोटे भैया सब अपना जो गृहस्थी का काम ना संसार का यानी ऑफिस का जो काम सब किया और उसके साथ अध्यात्म प्रगति भी की और खुद की ही नहीं बल्कि और उनकी वजह से बहुत लोगों का उद्धार हुआ। तो ऐसा ही जीवन हमारा भी होना चाहिए।
भैया जी एक प्रश्न और है कि परम पूज्य पापा जी जब पढ़ाते थे कॉलेज में तो उस समय उनके स्टूडेंट्स को भी आध्यात्म का फायदा होता था क्या?
अभी एक दो दिन पहले ही मैं किसी से ये कह रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में आप आके जो उनके साथ के लोग हैं उनको सत्संग के बारे में बतलाई। तो पापा जी ने तो मेरे दो एग्जाम्पल्स दिए उसमें, तो उसमें एक ये था कि पापा जी ने जब तो बापूनगर में रहते थे, यूनिवर्सिटी के पास ही था, तो यूनिवर्सिटी का क्वार्टर उनको अलॉट हुआ तो उन्होंने मना कर दिया। तो लोगों ने पूछा कि वो सस्ता भी रहेगा बड़ा भी है आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे? तो बोले कि वहाँ तो किसके घर में क्या सब्जी बन रही है क्या बन रहा है उस सबको पता रहता है, तो जब वो देखेंगे कि इतने लोग आते हैं तो तरह तरह की बातें होंगी क्योंकि लोगों की समझ में तो आएगा नहीं और वो उसको अपने अपने तरीके से देखेंगे और ये तरह तरह की बातें होंगी। तो उन्होंने जो ऑफिस का काम है और जो सत्संग का काम है उसको बिल्कुल अलग रखा। एक और कल परसों ही मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, परम पूज्य छोटे भैया के साथ के एक थे, वो दोनों मिलके एग्जामिनर की तरह से किसी यूनिवर्सिटी में गए, वहां से लौट रहे थे, तो लौटते में कुछ सत्संगियों को पता लग गया तो वो स्टेशन पे मिलने आ गए। अब ये जो साथ वाले थे प्रोफेसर साहब तो उनको बड़ा अचंबा हुआ कि ये भाई क्या ये है। पूछा भाई नरेंद्र ये तो तुम्हारा स्वरूप मैंने पहले कभी देखा नहीं, ये क्या है। तो बोले कि कुछ नहीं, ये मैं तो पोस्टमैन हूँ, लोगों की चिट्ठी लेता हूँ और दूसरी तरफ दे देता हूँ। तो काफी उनके करीब थे मगर उनको कभी ये पता नहीं लगा कि इनका इस तरफ भी रुझान है या क्या स्थिति है। तो वही चीज स्टूडेंट्स पे भी लागू होती है कि कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं अध्यात्म में कोई स्थिति है या सत्संग में कोई क्या है। तो वो दोनों चीजों को अलग रखा। अब रही बात ये कि उनके अगर स्टूडेंट हैं या उनके साथ के लोग हैं तो उनको आध्यात्मिक सहायता मिलती है या नहीं, वो तो मैं ये समझता हूं कि दो बातें हैं, लेना और देना। तो देने वाला अगर तैयार हो मगर लेने वाला अगर तैयार नहीं हो तो भी वो लेन देन नहीं हुआ। तो इन लोगों का जो संग का छींटा तो लगता है लेकिन वो रिसीवर हो तभी पहुंचता है। तो अब जैसे हमको कहते हैं, हम लोगों के लिए कहा जाता है कि कृपा तो हमेशा बरस रही, हमेशा बरसती रहती है, लेकिन अब वो पात्र होना चाहिए, पात्र उस तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। तब वो पात्र उल्टा पड़ा है तो कुछ नहीं आएगा, पात्र अगर छोटा है तो बहुत कम आएगा। इस तरह से पात्रता की भी बात है और हम किस तरफ देख रहे हैं उसकी भी बात। लास्ट क्वेश्चन।
भैया प्रणाम।
नमस्कार निमिषा।
पूजा और संसार में कैसे बैलेंस रखें, मतलब स्पिरिचुअल ड्यूटीज और वर्ल्डली ड्यूटी दोनों के बीच में बैलेंस कैसे हो?
तो पहली चीज तो ये कि जब तक हम इन दोनों चीजों में फर्क देखते रहेंगे तब तक ये अलग है। एक स्थिति साधन करते करते ये आ जाती है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसी के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उसमें तो वो ये दो तीन बार एग्जाम्पल आ चुका है मगर फिर बता देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो सिर्फ कनेक्शन से और उनकी प्रेजेंस फील हो उससे होती है। तो उसके लिए ना तो कोई बहुत ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत है, ना कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को कोई वेश बनाने की ज़रूरत है या घर छोड़ के कहीं और जाने की ज़रूरत है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप जहाँ हो वहाँ बैठ के अगर कनेक्शन है, उनकी प्रेजेंस फील हो रही है, तो वो जो घर छोड़ के और कंदरा में जाके बैठ रहा था वो किस लिए बैठ रहा था? कि मेरे को ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं हो तो मैं हमेशा ये फील करता रहूंगा कि मैं कनेक्टेड हूँ और प्रेजेंस है। तो गुरु महाराज ने तो ये कहा कि वो चीज तो तुमको घर बैठे भी मिल सकती और सारे काम करते हुए भी मिल सकती है। तो दादा गुरु महाराज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया करते थे कि लोग पुराने जमाने में पान खाया करते थे, पान खाते रहे और वो फाइलों में साइन भी होते रहे, बातवात भी होती रही और काम भी होते रहे। तो अध्यात्म का जो कनेक्शन की जो बात है कि अगर वो ऐसे हो जैसे हम पान खा रहे हैं बाकी काम भी हो। ये प्रश्न ये भी करते हैं कि अगर हम इस तरफ लग जाएंगे तो बाकी सब चीजें तो पीछे रह जाएंगी और बाकी सारे हमारे काम भी खराब हो जाएंगे। तो वो क्या करते थे कि भाई पान खाने वाला ये बाकी सारे काम नहीं करता क्या? लेकिन पान भी खा रहा है तो वो सारे काम भी कर रहा है। तो हमारा जो कनेक्शन है, जो प्रेजेंस है, जो सुरति की धार उनसे लगी हुई है, उसके लिए ना तो कोई ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन करने की जरूरत है, ना कोई बाकी चीजों को हटाने की जरूरत है। एक तो उन्होंने गृहस्थ लोगों के लिए ये कहा कि भाई 23 घंटे तुम घर का काम करो, अपने और काम करो और थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, उस समय बाकी सब भूल जाओ। अब होता ये है हम हर चीज में अगर उसको इस तरीके से लाने लग जाएं कि बाकी काम ठीक नहीं हो तो ये तो गलत है। बल्कि जब हम सत्संग करेंगे या साधना किसी भी तरह की करेंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा और चीजें बढ़ेंगी जिससे काम और ठीक होंगे। हमारे जो व्यवहार हैं वो सुधरेंगे, हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो बेटर होंगे। तो जैसे भी कहीं टीवी पे ही सुन रहा था कि असली जो चीज है कि आदमी अच्छा मनुष्य कैसे बने, तो अच्छा मनुष्य बनने के लिए ये काम करते हैं, ना कि मनुष्यता या अपने कर्तव्यों को छोड़ के कहीं जाके बैठ जाने के लिए, राइट। तो अक्सर ये होता है कोई मनुष्य इस तरफ झुकता है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि अब ये तो सब छोड़ छाड़ के इसमें लग जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपने व्यवहार को सुधारने की तो सबको जरूरत है, अपने काम को ठीक से करने की सबको जरूरत है, उसके लिए भी ये उतना ही जरूरी है।
जी भैया,
अच्छा लगा आज सबसे बात करके। सबको नमस्कार।